بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. موضوع کیونکہ امام زمانہ کے بارے میں ہے، ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے پہلے کہ ہم جب ظہور کی بات کرتے ہیں یا گفتگو اس زمانے کی کرتے ہیں کہ جب عدل اور انصاف پھیل جائے گا، جس طرح ظلم اور جور پھیلا ہوگا، تو ہم کو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی بنیادیں کیا ہوں، کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے عدل و انصاف کا تصور رکھتے ہیں. الگ الگ لوگ الگ الگ بنیادوں پر عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں. ہمارے دور میں یا 100, 125, 150 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو کمیونسٹ کا ایک خاص تصور تھا. ان کا یہ تصور تھا کہ اگر دولت کی تقسیم برابر ہو جاتی ہے، خود عدل و انصاف برقرار ہو جائے گا، نتیجتاً ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، کچھ تھوڑا سا اگر ڈفرینس ہو، فرق ہو تو فرق نہیں پڑتا، مگر اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں الگ الگ طبقے بن جائیں. تو ایک ہی طبقہ رہے گا کام کرنے والوں کا، جس کو لیبر کلاس بولیں گے، اور اس میں بڑے سے بڑا سائنسدان اور معمولی سے معمولی لیبر کا کام کرنے والا دونوں شامل ہوں گے. سیلری میں اگر تنخواہ میں فرق ہوگا تو تھوڑا بہت زیادہ فیسلٹیز اس کو دی جاتی تھی، گھر ذرا بہتر دیا جا سکتا تھا، گاڑی تھوڑی سر کی بہتر دی جا سکتی تھی، مگر اگر اتنا 19-20 کا فرق رکھا جاتا تو طبقے الگ الگ نہیں ہوتے تھے کہ ایک بالکل ہی غریب ہے تو ایک بالکل ارب پتی بنا ہوا ہے. ان کا تصور یہ تھا کہ یہ سب ممکن ہو جائے گا جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، اسی بنیاد پر اس کی ترقی سبب بنے گی انصاف کا. انسان کے اندر سے اخلاقی بنیادوں پر ایمان کو بنیاد بنا کر یہ تبدیلی آئے گی، ان کا یہ یقین نہیں تھا، بلکہ وہ الٹا کہتے تھے. کہتے تھے کہ دین ایک خاص زمانے کی دین ہے. جب لوگ امیر اور غریب ہوا کرتے تھے تو امیر طبقے کو اپنی پیسے کی بقا کے لیے یہ ضروری تھا کہ غریب کو بتلایا جائے کہ اگر تو اپنے کام کو صحیح انجام دے گا، نیک رہے گا، شریف رہے گا، اپنا حق اگر طلب نہیں کرے گا تو تیرا یہ حق طلب نہیں کرنا تجھے آخرت میں مرنے کے بعد جنت دے گا. تو اپنا حق اس دنیا میں مت دے، تو اپنا حق آنے والی دنیا میں دے. اس طریقے سے مذہب نے آ کر لوگوں کو دنیا سے بے خبر کر کر ایک آخرت کا خوبصورت تصور دیا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اب اس دنیا میں اپنے حق کو طلب نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بنیادیں انہوں نے پیش کی اور کوشش کی کئی جگہوں پر ریولوشن لانے کی. جرمنی میں کوشش کی گئی، ناکام رہی. ہوتے 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 رشیا میں یہ حرکت کامیاب ہوئی. 70-80 سال انہوں نے وہاں پر حکومت کرنے کی کوشش کی، پھر نظام پلٹ کر وہی پرانے نظام کی طرف آ گیا. طبقاتی نظام دوبارہ آیا ہے کمیونسٹ چائنا میں، کہ جہاں پر ابھی بھی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر بھی غریب اور امیر طبقوں میں فاصلہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ حال ہی کی بات اگر دیکھیں تو اب جو بننے والے پریسیڈنٹ ہیں ان کی بہن کے پاس، ان کے خاندان میں 370 ملین ڈالر کے ایسٹس ہیں. ان کی ملکیت اور ان کی فیکٹری جو اون کرتے ہیں اس کی ویلیو 370 ملین ڈالر. 1 ملین ڈالر 5.5 کروڑ روپے ہوتا ہے. 5.5 کروڑ ملٹی پلائڈ بائی 370. ان کی بہن کی، شوہر، بچوں کی انکم اتنی ہے. 370 ملین ڈالر سے جو انکم جنریٹ ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جبکہ چائنا کو یہ بازار کھولے ہوئے 15-20 سال نہیں ہوئے. تو اتنے کم مدت میں جو لوگ بالکل 19-20 تھے، وہ یہ سب سے پیسے والے بھی نہیں ہیں، غریب پیسے والے تو بلینوں میں چلے گئے. یہ 15-20 سال کی کمیونسٹ چائنا کی حکومت کے تحت ہونے والی عدالت ہے. तो अब क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अगर अदालत का तसव्वुर ईमान की बुनियाद पर अगर नहीं आता तो वो तसव्वुर अदालत का बहुत ज्यादा दिन बाकी रहने वाला नहीं है। रशिया में 70 साल, कम्युनिस्ट चाइना में तो 50 साल खत्म हो गए, यानी पूरा एक जनरेशन भी जो कि पैदा हुआ था वो भी मरा नहीं है। 1948 से पहले का जो जनरेशन है वो जनरेशन अपनी जगह अभी भी बाकी है, बूढ़ा हो गया है मगर बाकी। तो पूरी उनकी बचपना जो गैर कम्युनिस्ट दौर में गुजरा, जवानी गैर कम्युनिस्ट दौर में गुजरी, अब आखिरी हिस्सा बुढ़ापे का कम्युनिस्ट दौर में गुजर रहा है। पूरा इब्तिदा से लेकर इंतहा अगर आप देखें तो वही तबकाती निजाम था, वही तबकाती निजाम वापस तेजी से आ रहा है। तो ऐसे दौर में, ऐसे जमाने में जब हम पूरी तारीख की तरफ निगाह करते हैं तो अब हमको ये महसूस होता है कि अगर ईमान की बुनियाद पर इंसाफ न हो, ईमान वाले और हक और अदालत की तरफ कोशिश न करें, तब तक दुनिया में अदालत बर्पा होने वाली नहीं है। इसी बुनियाद के ऊपर कुरान की जो आयत है इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादी अस्सालिहून, कि ये दुनिया इसके वारिस इनहेरिटर्स साले बंदे होंगे, इसकी दलील यही है कि साले बंदे ही, नेक बंदे ही जो है सही किस्म की अदालत बर्पा कर सकते हैं। और साथ में वो आयत को अगर आप देखें इन्नमुनानल्लज़ीन, वो आयत भी यही है कि अल्लाह का इरादा ये है कि वो लोग जो कमजोर रह गए हैं उनको वारिस बनाए, उनको इमाम बनाए। तो ये भी पता चल जाएगा कि दीनी ईमान रखने वाले लोग आखिर जमाने से पहले वाले जमाने में कमजोर कर दिए जाएंगे। वो लोग जो दुनिया में कमजोर बना दिए गए उनको हम वारिसीन बनाएंगे, उनको हम इमाम बनाएंगे। तो ईमान की बुनियाद पर काम करने वाले लोग, एक मरहला ऐसा आएगा जो कमजोर समझे जाएंगे, उनकी ताकत नहीं रहेगी। मगर जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा अल्लाह का इरादा मुकम्मल होगा और नेक लोग ही सही वारिसीन बनेंगे और अल्लाह उन्हें दुनिया पर इमामत करने का मौका देगा। इसी जहन में हम ये तसव्वुर रखते हैं कि इस्लाम में इस अदालत के बारे में काफी एहतमाम किया गया है। अहले सुन्नत के पास भी अगर आप देखें तो कम से कम इमाम महदी के तालुक से 100 रिवायतें मिली, 100 रिवायतें मिली, किताबें मिलेंगी। कोई उनकी किताब ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि जिसमें इस आखिर दौर के हादी के बारे में न लिखा गया। कौन है उसके बारे में इख्तलाफ है। कुछ सुन्नी उलमा हत्ता इमाम आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम को जो है कबूल करते हैं, अक्सरियत नहीं करते, लेकिन फिर भी यह तसव्वुर उनके पास बिल्कुल वाज़ह तौर पर है। किताबें लिखी गई हैं, सेमिनार कंडक्ट किए गए हैं। ये जब कंडक्ट किए गए थे कि जो इंकलाब से पहले का दौर था, इंकलाब इस्लामी के बाद ये चीज कम हो गई, इसलिए कि महदी के तसव्वुर को ज्यादातर शियों से जोड़ दिया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं था। मदीने मुनव्वरा में सेमिनार हुआ था 1978 में इंकलाब से एक साल पहले, कि जो इस किस्म की गुफ्तगू की गई थी और महदी के तसव्वुर के ताल्लुक से इस्लाम में मुख्तलिफ मकाले लिखे गए, पढ़े गए, किताबें लिखी गई, पढ़ी गई। तो ये सब चीजों को हम देखते हैं कि खाली शिया अकीदा नहीं है, और शायद ही कोई कौम होगी कि जिसके पास किसी ना किसी तरीके से आखिर जमाने में अदल और इंसाफ का तसव्वुर न हो, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो, अर्थात उनके पास भी ये तसव्वुर मिलता है। कुछ हिंदुओं से मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, कि उनके पास ये है कि हमारा आखिरी जो आने वाला है अवतार वो अरब रहेगा। मेरी कहीं नजर कोई किताब पर नहीं गुजरी इसलिए हवाला नहीं दे सकूंगा। कुछ हिंदू दोस्तों से
सच है,
तो इस किस्म की जो है चीजें आपको मिलती है। फर्क अब यह है कि हम जो बुनियादें देख रहे हैं, जिस बुनियाद पर अदलो इंसाफ होगा वो बुनियादें हमारे लिए बे इंतहा जरूरी है। अदलो इंसाफ तौहीद की बुनियाद पर होगा, नबूवत की बुनियाद पर होगा, तसव्वुर सही इमामत की बुनियाद पर होगा, अगर ये कयामत पर यकीन की बुनियाद पर होगा। जब तक ये चार चीजें अपनी जगह पर सही नहीं होंगी तब तक अदालत का बर्पा किया जाना आखिर जमाने में भी मुमकिन नहीं होगा। यानी लोग कामिल ईमान रखते हो, अल्लाह की जात पर यकीन रखते हो कि वो उनका खालिक है और वो उसके बंदे हैं, और यकीनन उसने पैगंबरों को भेजा है ताकि लोगों की मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में हिदायत कर सके और किसी हिस्से को बगैर पैगंबर की हिदायत के नहीं छोड़ा है। उसके बाद पैगंबरों की दी हुई तालीमात पर अदालत की बुनियादों को मोकम करने के लिए उसने इमामों को बनाया है, इमामों को जो है मुकर्रर किया है, जिस तरीके से फिर हमको ये कुरान में मिलता है, और उस इमामत के सिलसिले को फिर इंतहा तक पहुंचाने के लिए इमाम मेहदी का तसव्वुर आता है। तो अगर ये बुनियाद आपकी हमारी खोखली हो जाए तो हम फिर ये तसव्वुर को कोई तरीके से दुनिया में काम में नहीं ला सकते। हमें नहीं पता के जहूर कब, आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात बोल रहा हूं, 15 शाबान के दिन में मुझे जो है इमाम कुमैनी की रूबरू तकरीर सुनने का मौका मिला, चलिए जमरान में, तो उनका यह जुमला था कि हमको पता नहीं है कि कब जो जहूर होगा, किसी को भी पता नहीं, हो सकता 100 साल हो सकता था, मगर जो हमारी जिम्मेदारी है वो तब्दील होने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी तब्दीली जहूर के बाद आएगी वो तब्दीली इन्हीं बुनियादों पर आएगी जो हमारे पास आज रहने चाहिए। यानी तौहीद के बगैर हमारा माशरा नहीं चल सकता, नबुव्वत के बगैर नहीं चल सकता, इमामत के सही तसव्वुर के बगैर नहीं चल सकता। जब तक कि हमारे पास कयामत का तसव्वुर ना हो कि बुराई और अच्छाई में फर्क अगर इस दुनिया में नहीं होता तो कयामत के दिन तो यकीनन होगा। नेक से नेक इंसान को आज के दौर में कत्ल किया जा सकता है, उसको आना नशीन किया जा सकता है, लेकिन उसका नतीजा दुनिया में अगर जाहिर ना हो रहा हो आखिरत में तो जाहिर होगा। जालिमीन को अपना जो किरदार था उसका नतीजा कैफर किरदार को उनको पहुंचना पड़ेगा। तो ये तसव्वुर जो है हमें अपनी नेकी की तरफ बाकी रख सकता है, क्योंकि हम कयामत पर यकीन रखते हैं, तो इस बुनियाद पर कि हम दुनिया में हर कामयाबी को ढूंढना नहीं चाहते, हम कामयाबी को फकत उन उसूलों के तहत ढूंढना चाहते हैं जो अल्लाह ने बताए, यानी उसकी जात पर यकीन, नबुव्वत पर यकीन, इमामत पर यकीन, अपनी ताकत होगा झूठ पर यकीन रखकर काम, क्योंकि बहुत ज्यादा इंसान को कामयाबी अगर दुनिया की दरकार है दीनी दुनिया में ही तो वो हर किस्म का काम करने को तैयार हो जाएगा। कई आपको दीनी ऐसे अफकार रखने वाले मकतब मैं बतलाता हूं कि जो दीनी कामयाबी के लिए हद गारतगरी कर रहे हैं, आज के हमारे दौर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग जो बम फोड़ रहे हैं उनका तसव्वुर यह है कि बम जो हम फोड़कर निहत्ते बेगुना लोगों को कत्ल कर रहे हैं जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, बसों के एक्सप्लोजन आप सुन रहे हैं यहां पर वहां पर ईरान में हो रहे हैं, इराक में हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं या हिंदुस्तान में कभी कभी हो रहे हैं, तो ये तसव्वुरात की जो है हम धमाके कर लोगों को निहत्ता लोगों को गरीब लोगों को मार रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं और कईयों को जिंदा भी अगर रख रहे हैं तो ऐसी हालत में कि बेचारों के पास उसके बाद अपने रजा के लिए पैसे नहीं रहेंगे, रजा के वो अपने इलाज के लिए पैसे खर्च कर सकते, क्या बोलकर कर रहे हैं, दीन की बुनियाद पर उनमें हिंदू शामिल है मुसलमान शामिल है। कोई दुनिया का तबका इस वक्त ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी तरीके से जुल्म कर अपनी कामयाबी को जुल्म के जरिए से हासिल करना चाह रहा है। गुजरात में जो वाकया हुआ जिसमें हुकूमत भी मुलविस थी, कोई शक नहीं है इसके बारे में, घर चाहे कहा जा रहा है कि हुकूमत मुलविस नहीं थी, जबकि कम से कम अकल रखने वाले आदमी को भी इस बात का शऊर साफ तौर पर था कि हुकूमत का उसमें हाथ था। तो वो लोग भी कामयाबी को दुनियावी सियासी कामयाबी को कत्ल गारतगरी के जरिए से हासिल करना चाह रहे हैं। तो आया हम जो ईमान रखते हैं हम वैसे हो जाए हक को जो है किसी शक्ल से हम इस तरीके से कि जो हम हक समझ रहे हैं उसको पेश करते जाए आगे बढ़ाते जाए, ये कहकर कि जो सामने आएगा उसको हम खत्म कर देंगे, ये तरीका हमको दीन नहीं सिखा। हम जब आखिर जमाना की बात करते हैं वो इस बुनियाद पर करते हैं कि जमाना उस हद तक आगे बढ़ जाएगा, मुस्तजफीन ईमान वालों को बना दिया जाएगा, उनका ईमान फिर भी बाकी रहेगा, इस हद तक के वो ईमान निखर जाएगा कि अल्लाह की तरफ से अपनी इमदाद देना अल्लाह मुनासिब समझेगा, तब जरूर होगा। तब तक के वो जमीना फराहम नहीं होगा जिस बुनियाद के ऊपर अल्लाह की नुसरत हम तलब कर रहे हैं आ नहीं हो, तब तक वो जहूर होने वाला नहीं है। और वो ज्यादा इस बात पर है कि मुस्तज़फीन का ईमान की शक्ल का होता है। सबसे बड़ी मुश्किल दुनिया में ताकतवर लोगों की बदईमानी नहीं है, सबसे बड़ा मसला कमजोरों की बदईमानी। जो ताकतवर है उनको बेईमान रहने में फायदा है, क्योंकि उनकी बेईमानी में वो दुनिया को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, और बगैर सोचे समझे बगैर एहसास करे हुए गुनाहगार वो उस ऐश और मस्ती की जिंदगी को अपनी जिंदगी का हक समझ रहे हैं। लेकिन कमजोरों को बदईमानी से क्या मिल रहा है, कमजोरों को बदईमानी से क्या मिल रहा है, उनको तो उनका हक नहीं मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई के मैदान में पीछे, सेहत के मैदान में पीछे, काम कारोबार के मैदान में पीछे, हर जगह पर उनको पीछे ढकेला जा रहा है। अगर कुछ मिल रहा है तो टेलीविजन के ऊपर देखने वाले कुछ मना दे, जो पैसे वालों की जिंदगी को जो है और चमका कर दिखाते हैं ताकि इनकी लालच और तड़प और बढ़ जाए और जो है वो उस खार में जिंदा रह जाए और एक दिन मर जाए। तो कमजोरों को बदईमानी से कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि और भी कमजोर होते जा रहे हैं, जबकि ताकतवर लोगों को बदईमान होने से दुनिया भी फायदा देखकर कुछ हद तक हो रहा है, पूरी हद तक तो उनका भी नहीं हो रहा, उनके भी घर तबाह हो रहे हैं, उनके भी परेशानियां बढ़ रही हैं, मगर कुछ हद तक जिस दायरे में वो कोशिश कर रहे हैं उस दायरे में ऐशो मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जब अगर कमजोरों का ईमान नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हो रहा है वही होगा, कमजोर कमजोर को मारने की कोशिश करेगा, आपस में उनके लड़ाई झगड़े होंगे, ताकतवर लोग इस बात की कोशिश करते रहेंगे कि इनके दरमियान इतने झगड़े होते रहे कि ये लोग आपस में ही खुद लड़े भिड़े मरे रहे और हम अपनी जगह पर अपना काम कर सके। नतीजे में मुख्तलिफ फिरके बनाए जा रहे हैं, हर फिरके को जो है मौका दिया जा रहा है कि तुम अपना सर बुलंद करो, चाहे वो फिरके में कोई ताकत फिक्री न हो, क्योंकि फिरका बन रहा है उस फिरके को आप देखते हैं कि सपोर्ट ताकतवर लोगों का मिल रहा है, पुलिस का मिल रहा है, हुकूमत का मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि वो चाहते हैं कि नीचे तबके में गरीब आवाम आपस में लड़ते झगड़ते रह जाए और उनकी ग्रोथ सही तरीके से न हो, क्योंकि अगर उनकी ग्रोथ सही तरीके से हो जाएगी तो तादाद में ये इतने ज्यादा है कि वो तादाद इनकी जो है सबब बन जाएगी ताकतवर, आज के ताकतवर लोगों की ताकत खत्म होने का। क्योंकि बिलाकर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वोट देकर तो लोग, मगर लोगों को अगर समझ ना रहे, अकल ना रहे, फिक्र ना रहे, तो आज की दुनिया अकल फिक्र से गरीबों को कमजोरों को दूर रखने की कोशिश कर रही है, जबकि दीन का मकसद यह है कि उसी तबके को होशियार करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को देख लीजिए या गुज़िश्ता पैगंबरों के दौर को देख लीजिए, सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन रहे, जनाबे नूह का जमाना ले लीजिए, आदम तो अपनी औलाद ही में रहे, कौम की हद तक अगर कोई नबी रहा है या रसूल रहा है तो वो जनाबे नूर है। उनके मानने वालों के बारे में कुरान किया है कि उनको जो लोग नहीं मानते थे उन्होंने कहा कि तुमको तो अराजील मानते हैं, जो ज्यादा अक्लो फहम नहीं रखते, बादी और राय बिल्कुल इब्तदाई फिक्र हैं, जो चीज सही सामने आई कबूल कर लेते हैं, और हम क्योंकि ज्यादा सोचने वाले हैं हम इसलिए तुमको नहीं मानते। अच्छा उसकी कोई दलील नहीं, तुम सीधे साधे मामूली लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, अराजील है बिल्कुल वजीर लोग। ये इब्तदाई दौर के पैगंबर की बात बोल रहा हूं, इंतहा पे भी आइए आप, बिलाल को सजा दी गई ईमान की बुनियाद पर, बिलाल को ना, और ऐसे कई और लोग के जो गुलाम थे लेकिन ईमान का मफहूम समझते थे। बहुत से ऐसे लोग थे सुफियान माविया जैसे कि जिनके पास दुनिया भी दौलत थी, दुनिया भी इख्तदार था, ईमान की उनको जरूरत थी ही नहीं। तो हकीकतन अगर देखा जाए तो ईमान की जरूरत उन लोगों को है कि जो मुस्तज़फ है, दबाए हुए हैं, लेकिन वो ईमान वही वाला ईमान हो जो तमाम रसूलों ने पेश किया और बाद खत्म रिसालत हमारे इमामों ने पेश किया। तौहीद कामिले तमाम इखलास के साथ बगैर किसी कमी के। आप अगर खुदा को कबूल कर रहे हैं तो पूरा कबूल करना पड़ेगा। आप ऐसे खुदा को कबूल नहीं कर सकते कि जिसको हम कुछ दायरे में कबूल करें और कुछ दायरे में कबूल न करें। आधा दायरा खुदा का, आधा दायरा हमारा। 1% या उससे भी कम का इख्तियार हम अपने वास्ते नहीं रख सकते सिवाय इसके कि अपने तमाम इख्तियार को उसकी मर्जी के ताबे कर। हमारे अइमा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ यही साबित किया है कि इख्तियार हमारा नहीं है। तमाम अंबिया ने यही काम किया है, यही कहा है कि इख्तियार हमारा नहीं है। आज के जमाने में हमको ये दीन सिखाया जा रहा है कि इख्तियार किसी का नहीं है, तुम्हारा ही इख्तियार किसी का नहीं है, तुम्हारा ही है। तुम अपनी मर्जी से जो चाहे कर लो। अब जब ये कहा जाएगा तो फिर दीन बाकी कहां रहेगा? दीन का मतलब अपना इख्तियार जीरो, सिर्फ। आज जो दीन पेश किया जा रहा है उसका मंशा, उसका मकसद इख्तियार 100%। इसमें और उसमें कोई कॉमन चीज नजर आ रही है? जब कॉमन चीज नजर आ नहीं रही है तो दीन जिन बुनियादों पे ग्रो होता है, बढ़ता है आगे, वो ग्रोथ हमारी सोसाइटी में आ सकती है। एक चीज 100% आप ऑपोजिट कर रहे हैं, 100% ऑपोजिट कर रहे हैं। इख्तियार कुछ बाकी नहीं रखे अल्लाह रसूल और अहले बैत का, तमाम इख्तियार सब कर लिए अपने लिए। इख्तियार फकर और वो भी उनको पुकारने का भी इख्तियार आपने अपने आप को दे दिया है। कैसे पुकारे, कैसे याद करें, वो सब आपको है। उधर से आपको देखना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था ताकि उनकी बतलाई हुई बात को ढूंढे। कोई नहीं बोलता कि कुरान की आयतें इस बारे में क्या कहती हैं, कोई नहीं बोलता कि रिवायतें इस बारे में क्या कहती हैं। रिवायतें भी अगर लाई जा रही हैं तो वही रिवायतें लाई जा रही है कि जो अपने इख्तियार को 100% बाकी रख सके। वो रिवायतें इस्तेमाल नहीं की जा रही है कि जो हमारे इख्तियार को जीरो कर दे। इंसान जब अपने आप को अपने इख्तियार से अपने इख्तियार को जीरो कर लेता है तब वहां से ही दीन का सफर हकीकी माना में शुरू होता है। क्योंकि फिर वो हर कदम के लिए ढूंढेगा कि मुझे यहां पर क्या करना है, और पलट के जाएगा अल्लाह रसूल और अहले बैत की तरफ। अगर वो सिलसिला ना हो तो आगे का सिलसिला भी बढ़ने वाला नहीं है। दीन नुमाई रहेगी, दीन नहीं रहेगा। हम इस खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं, खुसूसन इन अय्याम में जो हम अय्याम विलादत के तौर पे मनाते हैं। इन अय्याम में हमको अपने रूट्स को देखना है, अपनी जड़ें, उसूल दीन जिसको हम बोलते हैं, उसको गौर से समझना है, देखना है कि इसमें हमको क्या फायदा होने वाला है। और जब अगर हम उन उसूल दीन को पूरी तरीके से अपना लें तो फिर ये इन अय्याम में आगे की तरफ किस तरीके से जाना है, किस तरफ बढ़ना है, वो हमको समझ में आएगा। हम आज का दिन वो दिन है कि जहां के ऊपर हम गुज़िश्ता को भी देखें, आगे को भी देखें। खाली आगे को देखने वाला दिन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि बस आगे जो होगा सब कुछ आगे ही होगा। आगे जब तक नहीं होगा कि जिसका आज ना हो, आज अगर ईमान वाले नहीं बनेंगे तो कल जहूर होने वाला नहीं है। इकबाल का मशहूर शेर है, वो कौम नहीं लायक है हंगामा फर्दा जिस कौम की, पता है तकदीर में मेरे को याद आया, इमरोज नहीं है, बाकी का तो मालूम तकदीर है या नहीं। जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है, जाहिर है तकदीर का लफ्ज के ऊपर मेरे को यकीन नहीं है, जरा देख लेगा तो वो कौम नहीं लाए थे हंगामा पर्दा जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। तकदीर का लफ्ज मुझे यकीन नहीं है कि भाई कोई और लफ्ज भी हो सकता है। तो आज इमरोज का मतलब आज, कल आज से ही बनेगा। कल अगर नुसरत करने वाले लोग बनेंगे तो वो नुसरत करने वाले आज ही से बनेंगे। हो सकता है ये जेनरेशन से नहीं बने, मगर ये जेनरेशन की अगर ईमानी सतह अच्छी रहेगी तो उनकी औलाद की ईमानी सतह वैसी रहेगी, और वो औलाद फिर और एक ऊंची सतह पे जाएगी तो जब भी जहूर होगा वो सिलसिला अपनी जगह बाकी रहेगा। अगर हम अपने दौर में अपनी जिम्मेदारी पर नहीं पूरी करेंगे तो फिर आगे के जनरेशन पे बात उठ जाएगी कि वो माँ बाप कैसे रहेंगे, वो बच्चे कैसे रहेंगे, कि जो फिर आगे तो आज हम अपना वो खो देंगे। फिर वही कुरान की आयत आई जाएगी कि दिल का उम्मत उन खलत लहामा कसब कसबत व लकुम मा कसब तो वमा तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। वो गुज़िश्ता की कौम थी जो कर ली जो उसने कर लिया, तुमको जो करना है तुमको करना है और तुमको उनके बारे में पूछा नहीं जाएगा। तो आज हमारी जिम्मेदारी, कल उन्होंने ये नहीं किया बोलकर नहीं, वो कम होने वाली है, कल आने वाले कर लेंगे बोलकर भी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि हम जो आज करेंगे उसका असर कल पर भी पड़ेगा। तो जहां पर भी हम ठहरे हैं या हम तो सीधे रास्ते की तरफ जाएंगे या गलत रास्ते की तरफ जाएंगे। अगर आज हम ये तय नहीं कर लेते हैं कि हम अपने इख्तियार को सिफर बनाने की कोशिश करें ताकि अल्लाह और रसूल और अहले बैत से अपने रास्ते को ढूंढे, हासिल करें और उस रास्ते पर आगे बढ़े, और यकीनन वो रास्ता है जो फिक्र का रास्ता है, अकल का रास्ता है, रुश्त का और तरक्की का रास्ता है, दुनियावी और आखिर उखरवी दोनों सआदतों का रास्ता है, लोगों के लिए मिसाल बनने का रास्ता है। क्योंकि जब तक हम मिसाल नहीं बनेंगे हम तब तक दूसरों को इस रास्ते की तरफ नहीं ला सकेंगे। आज हमारी कौम को देखकर कौन हमारी कौम की जैसी कौम बनने की ख्वाहिश रखे, कौन हमारी कौम की जैसी कौम, आप लिटरेसी लेवल देख लीजिए आदाद शुमार, आपके पास एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है पूरी कौम में, इसी पुराने शहर से बिरादरान अहले सुन्नत में मैं आपको 20 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बता सकता हूँ, इसी पुराने शहर से, इसी हमारे जाफरी हॉस्पिटल को आने वाले डॉक्टर को बता सकता हूँ सुपर स्पेशलिस्ट, जिसको कहा जाता है डीएम या एमसीएच, नहीं है मतलब एक भी नहीं। क्यों हम तालीम हासिल नहीं कर सकते, अखली फिक्री सरमाया हमारा कहां गया? बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वालों को हो क्या गया है, इल्म कहां गया? आप साफ समझ सकते हैं, इसलिए कि जब इल्म मिंबरों से उड़ जाए, अगर कुफर हस काबे बाकीजत खुजा मानत मुसलमानी, फारसी का शेर है कि अगर कुफर काबे से निकलेगा तो मुसलमानी कहां बाकी रहेगी। तो जब मिंबरों से इल्म खत्म हो जाएगा, मिंबरों से झूठी कहानियों और किस्सों की बातें होंगी, मुस्तनद की जगह मरदूद रिवायतों को इस्तेमाल किया जाएगा कि जिसकी ना सनद है ना दिरायतन काबिल कबूल है। ऐसे लोग बातें करेंगे कि जिनको दीन के बारे में किस तरीके से फिक्र की जाती है, सौ हजारों साल का एक सरमाया है कि जो हमारे हौजों से निकल रहा है। आज के लोग जो बैठ के बात कर रहे हैं वो आज की बात नहीं कर रहे हैं, वो हजार साल पुरानी तारीख भी देख रहे हैं, उससे पुरानी तारीख के ऊपर भी नजर रख रहे हैं, उन रिवायतों की किताबों पर भी नजर रख रहे हैं जो आज से हजार साल पहले लिखी गई, उसके बाद बात की जा रही है, चीजों को तोला जा रहा है, नापा जा रहा है। इतने बड़े हौजों से मरबूत होने वाली कौम का आज ये जहल देखने के बाद एहसास होता है, खुसूसन इस जमाने में जब कम्युनिकेशन आम हो गया है, वहां पर बैठ के लोग यहां पर क्लासें ले सकते हैं और ले रहे हैं अलहमदुल्ला, उसके बाद ये फासला क्यों हो गया? ये फासला हमारी गफलत का नतीजा है। हमने अपने अल्लाह से, अपने रसूल से, और मैं बिल्कुल बगैर किसी तरद्दुद के कह सकता हूं अपने अइमा से हमने मुंह मोड़ लिया, हमने मुंह मोड़ लिया उन तालीमात से मुंह मोड़ लिया है जो अल्लाह रसूल और अहले बैत की तरफ से हम तक पहुंची गई, पहुंचाई गई, और अपने आप को साहिब इख्तियार समझकर हम एक मस्त हाथी की तरह आगे बढ़ रहे हैं जिसको खुद अपने आवाज़ और नतायज का अंदाजा नहीं। तो ऐसे दौर में खुसूसन जवान लोगों से यह ख्वाहिश है कि और सीरियस हो जाए, जो काम कर रहे हैं 100% तवज्जो के साथ करें, पढ़ रहे हैं तो 100% तवज्जो के साथ पढ़ें, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछने में शर्माए ना, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करें और गुनाह से दूरी जिस हद तक मुमकिन हो सके अख्तियार करें। अगर ये इल्म का रास्ता गुनाह से दूरी के साथ तय किया जाएगा, इस तेजी से तय होगा कि कोई और फिर सबकत ले जाने में हमसे मुश्किल और दुश्वारी का एहसास करेगा। आज तो कुछ भी नहीं, एक रुकी हुई चीज से आगे बढ़ना कितना टाइम लगता है, एक रुकी हुई चीज से आगे बढ़ जाना कितना आसान। हम वो रुकी हुई कौम है, जुमूद वाली कौम हो चुके हैं, जो कि बढ़ के आगे बढ़ने की जगह पीछे हट रही है। रजत खैरी जो इसको कहा जाता है, पलटना पलट पलट कर पलट जाना, तो हम ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं और दूसरे नीचाई से ऊपर जा रहे हैं। ये एहसास जब तक हमको नहीं होगा हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह रसूल अहले बैत को मुकम्मल इख्तियार देना, उनकी तालीमात को पूरी तौर पर कबूल करना और उन्हीं बुनियादों पर गुनाह से दूरी अख्तियार करते हुए आगे बढ़ना, तो यह खुलासा है। और मैं समझता हूँ इन अय्याम का, खुसूसन रजब शाबान और भी माशाल्लाह से आगे अल्लाह का महीना आ रहा है रमजान, तो उसमें ये दौर को इस तरीके से गुजारे जहां तक भी मुमकिन हो सके कि वो कैफियत हमें आ सके सब में, और वो भाईचारे भी हमें डेवलप हो सके जिसके नतीजे में इंस्टीट्यूशन और इदारे बन सके, आगे बढ़ सके। उम्मीद है जो कॉलेज का इरादा कर रहे थे कि हाई स्कूल और कॉलेज मिलाकर वो कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि आइंदा साल हमारे पास आपस उसमें काम करने के लिए छोटा सा स्कूल और एक छोटा सा कॉलेज तो जरूर रहेगा, जहां पर कोशिश की जाएगी कि अपने बच्चों को और दूसरे कौम के बच्चों को मिलाकर एक मुस्तकबिल की तरफ उनको भेजा जाए कि जो ऐसा हो कि जिसके अंदर दुनियावी फिक्र के साथ उखरवी फिक्र और अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल, ये चीजें जो है मिलाकर दी जाए। अपना ख्याल करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, दूसरों का ख्याल करने के लिए इंसान को एक दूसरी नजर से देखना पड़ता है दुनिया को, तो वो नजर भी देने की कोशिश की जाएगी कि तुम अपनी तरक्की के साथ साथ अपनी कौम की तरक्की, आम इंसानों की तरक्की को भी मद्देनजर रखते हुए कोशिश करो। अपने लिए कोशिश कर लेना कोई कोशिश करना नहीं है, बस दुआ के साथ कि अल्लाह खैर के रास्ते को हमारे लिए आसान कर दे और शर का हमें ऐसा इल्म दे कि हमको फिर शर की तरफ एक नजर करने की भी ख्वाहिश हमारे दिलों में पैदा ना हो, हमारे में आपसी इत्तेहाद को बढ़ाए और कामयाबी के रास्ते पर अल्लाह रसूल और अहले बैत के बदलाए हुए रास्ते पर हमको गामजद फरमाए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.